नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया। 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोटा बूंदी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। और प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार, राज्य के विभिन्न जिलों में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 का नतीजा जारी कर दिया है। इस बार इंटरव्यू के लिए 2168 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी कि दो अभ्यर्थियों के परिणाम कोर्ट केस के चलते और तीन के प्रशासनिक कारणों से रोके गए हैं तथा 20 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गई है। मेहता ने बताया कि साक्षात्कार की तारीख अभी तय नहीं की गई है, इसकी सूचना निर्धारित समय पर अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल देर रात जयपुर में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री शर्मा ने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से व्यवस्थित करने को कहा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित और दिव्यांगजन को सर्दी से बचाव के लिए कंबल बांटे। मुख्यमंत्री ने आमजन से जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आह्वान किया
कि सभी के घरों में बहुत ऐसे सर्दी के समय के चाहे कपड़े होंगे, कंबल होंगे, रजाई होंगी, मैं कहना चाहता हूँ वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जरूरतमंद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व बनता है, काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें पास में पड़ोस में, और इस सर्दी से किस तरह से वो बच सकते हैं, उनको परेशानी नहीं हो, इसमें सभी लोगों का योगदान हो, ऐसा मुझे कहना।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे। श्री शेखावत जोधपुर के मंडोर स्थित राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित 119वीं फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग की पासिंग आउट परेड में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ के चुनाव अधिकारी का प्रभार दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को असम और भूपेंद्र यादव को गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की निगरानी की कमान सौंपी है। इनके निर्देशन में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। प्रदेश में संगठित साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने कल से विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर शील्ड शुरू किया है। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह अभियान साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने, साइबर प्रकरणों और परिवादों के निस्तारण तथा नागरिकों को साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। राज्य की पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। मोना अग्रवाल ने पैरालंपिक्स 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल HS स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को पोषण की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी कोटा के किशोरपुरा स्थित 56 भोग परिसर में करेंगे। अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें हर महीने पोषण किट, चिकित्सकीय परामर्श, निशुल्क दवाइयां और नियमित वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी जाएगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कल कोटा के MBS अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वहां चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री बिड़ला ने कहा कि सरकार का आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर करने का प्रयास है।
एक गरीब व्यक्ति को निजी अस्पताल में जाना पड़े, सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज हो सके, उसके लिए जो भी आवश्यकता उसको पूरा करेंगे। समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेज, निजी चिकित्सालय से बेहतर सरकारी अस्पताल बनेंगे।
पाली जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से 7 दिवसीय अमृताहाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में कल इस मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर LN मंत्री ने किया। मेले में स्वयं सहायता महिला समूहों की ओर से निर्मित विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, साड़ियां, जूतियां, राबोड़ी, बड़ियां, अचार, सौंफ, सुपारी, हस्तशिल्प उत्पादों के साथ कुल 80 स्टॉल लगाई गई हैं। इधर बाड़मेर में चल रहे अमृताहाट मेला परवान पर है। महिला उद्यमियों में उत्साह बना हुआ है।
मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा तैयार मिट्टी के बर्तन, ऊनी पट्टू, टेरिकोटा, मीनाकारी, कशीदाकारी का सामान और केर सांगरी कुमठिया जैसे गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। मेले में स्थानीय लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस आयोजन को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह बना हुआ है। ये मेला रविवार को सम्पन्न होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है। राज्य के विभिन्न जिलों में कोहरा छाए रहने के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है। पाली में भी कोहरे के कारण सर्द हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सवाईमाधोपुर में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। करौली में कल धूप खिलने से सर्दी के असर में थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं सीकर में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। जैसलमेर में सर्दी के चलते मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर में भी तेज सर्दी का असर बरकरार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घने कोहरे के कारण वहां जनजीवन प्रभावित है।
नए साल की शुरुआत से ही पूरा इलाका घने कोहरे और सर्दी की चपेट में है। इसके चलते ठिठुरन और गलन का असर बना हुआ है। कोहरे के चलते सुबह जल्दी घरों से निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण वाहन भी रेंगते नजर आ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की जुगत में हैं। घना कोहरा वर्तमान में गेहूं और सरसों की फसल के लिए काफी लाभदायक है, लेकिन इसके कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत आज उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी कामाख्या के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन अजमेर और जयपुर होते हुए जाएगी। इस यात्रा में कुल 776 यात्री शामिल होंगे, जिनमें उदयपुर से 226, अजमेर से 120 और जयपुर से 430 यात्री सवार होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया। 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोटा बूंदी क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू होगा। और प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार। राज्य के विभिन्न जिलों में कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।